समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में। समय है 7:30 और 18 मई 2024 की इस नई सुबह में अब तक की प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और आज सवेरे के संक में मैं हूं निखिल कुमार, मेरे साथ में है सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
हेलो निखिल, गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू लिसनर्स ट्यून इन टू हियर आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। एज ऑलवेज वी हैव प्लेंटी टू share with you also guys, starting with some news headlines.
लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार कार्य चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता देश के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पूर्वी दिल्ली में चुनावी सभाएं करेंगे। वे हरियाणा के अम्बाला और सोनीपत में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ओडिशा में जनसभा करेंगे।
In Uttar Pradesh, senior leaders and star campaigners of different political parties will hold roadshow and public meetings today. Defence Minister and senior BJP leader Rajnath Singh will address public meetings in Basti and Lucknow today. Home Minister and senior BJP leader Amit Shah will hold a roadshow in favour of party candidate Smriti Irani in Amethi today. Mr. Shah will also address political rally in Banda and Jhansi, while Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav will address a political gathering in Shravasti, Faizabad, Sultanpur and Ambedkar Nagar. Congress leader Rahul Gandhi will campaign on Barabanki Lok Sabha seat. Meanwhile, Bahujan Samaj Party Chief Mayawati is scheduled to address public gathering in Basti.
प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में सीटें जीतने का भरोसा जताया है। मुंबई में कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की एक रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं और उनकी प्राथमिकता आम आदमी के जीवन को आसान बनाना है। मुंबई को सपनों का शहर बताते हुए श्री मोदी ने मुंबई को उसका हक दिलाने का वायदा किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि मोदी के अलावा किसी ने भी देश का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। इस रैली में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई नागरिक निकाय में घोटालों को लेकर उद्धव ठाकरे की आलोचना की। इससे पहले मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में विपक्षी गठबंधन ने भी रैली की थी।
Prime Minister Narendra Modi will address two rallies in Haryana today in favour of BJP candidates. He will address a rally at Ambala around 2:45 p.m. and at Gohana in Sonipat around 4:45 p.m. In view of his visits to Ambala and Sonipat, the Section 444 has been imposed and security has been tightened. Mrs. Banto Kataria, wife of former Union Minister late Ratanlal Kataria, is BJP candidate from Ambala, while Mohanlal Badoli is contesting from Sonipat. The polling in Haryana will be held on 25th of May.
लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए नाम वापस लेने का कल अंतिम दिन था। इस चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर सातवें चरण में वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होनी है।
Congress President Mallikarjun Kharge assured that Dr. Babasaheb Ambedkar's constitution will remain intact under any circumstances and that the citizens of India will not allow the situation to become like that of some other countries. Addressing at India Bloc rally in BKC in Mumbai, he alleged that the Union government is using the ED, CBI and income tax to imprison opponents. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal accused the NDA government of demolishing the opposition in the country by targeting them. Shiv Sena UBT Chief Uddhav Thackeray criticised the BJP, accusing them of conveniently accepting dynastic rule. He further condemned the Prime Minister, highlighting his participation in a roadshow while families affected by Ghatkopar hoarding incident were still in mourning. Many other prominent leaders of India Bloc were present at the rally. Telecommunication Secretary Dr. Neeraj Mittal has highlighted that sustainable development will require the deployment of technology across the entire supply chains, economies and social sectors. Dr. Mittal said this while addressing the gathering at the roundtable discussion organized to commemorate World Telecom and Information Society Day in New Delhi yesterday. Dr. Mittal emphasized that telecommunications is integral to achieving sustainable development and the country has robust telecom network system. He also mentioned that digital economy will become roughly about $1.5 billion in India by 2025-26 and it will be a good 15% of the GDP. Over 30 industry leaders, manufacturers and startups participated in the roundtable discussion on sustainable digital development driven by AI.
विदेश मंत्रालय ने रोजगार के लिए कंबोडिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा करने वाले भारतीयों को परामर्श जारी कर फर्जी एजेंटों से सावधान रहने को कहा है। कंबोडिया और लाओस में भारतीय दूतावासों ने परामर्श में कहा है कि इस क्षेत्र में सक्रिय कई फर्जी एजेंट भारत में एजेंटों के साथ लोगों को धोखाधड़ी वाली कंपनियों विशेष रूप से साइबर अपराध में शामिल होने का लालच दे रहे हैं।
Aam Aadmi Party leader Atishi rebutted the claims of Rajya Sabha MP Swati Maliwal in the alleged misconduct case. Addressing the media yesterday, she claimed that a video has surfaced which disproves Swati Maliwal's claims. She accused the BJP of hatching a conspiracy in this case. Swati Maliwal has lodged a complaint against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's PA Vibhav Kumar, alleging misconduct with her. Ms. Maliwal accused the Aam Aadmi Party of taking a U-turn in the case, alleging that the party is trying to save the accused. Meanwhile, Chief Minister Arvind Kejriwal's PA, Vibhav Kumar, yesterday filed a complaint against Swati Maliwal.
इजराइल की सेना ने गजा से तीन बंधकों के शव बरामद किए हैं। इजरायली रक्षा बल आईडीएफ ने कहा है कि शव अमित बुस्किला, शनी लॉक और इज्जाद गैलरेंटर के थे। आईडीएफ ने यह भी कहा कि 7 अक्टूबर को उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके अवशेषों को गजा वापस ले जाया गया। इजरायल प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इस खबर को बेहद दुखद बताया। हमास के बंदूकधारियों ने 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर एक हमले में लगभग 1,200 लोगों की हत्या कर दी थी और वे 252 अन्य लोगों को बंधक के रूप में गजा ले गए थे। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमास के हमलों के बाद इसराइल ने गजा पर आक्रामक हमला किया जिसमें 35,000 से अधिक लोग मारे गए। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया है। लखनऊ ने मुंबई के सामने जीत के लिए 215 रन का लक्ष्य रखा और जवाब में मुंबई की टीम निर्धारित 20 ओवर में 196 रन ही बना सके। इस जीत के बावजूद लखनऊ की टीम प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। मुंबई की टीम पहले से ही इस दौड़ से बाहर है। प्रतियोगिता में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और श्रोताओं, अब समय हो चला है प्रमुख महानगरों यानी राजधानी दिल्ली और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु तथा हैदराबाद से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। तो सुभद्रा, क्या समाचार हैं आपके पास?
यस निखिल, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, एप्सिलॉन एडवांस मटेरियल्स, अ ग्लोबल बैटरी मटेरियल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, इज स्काउटिंग फॉर लैंड टू एस्टैब्लिश इट्स ₹5,000 करोड़ cathode plant in India. The company is looking at 5 states including Karnataka, Tamil Nadu and Telangana to set up the facility and commence the commercial production by next year. The development comes close on the heels of EAM acquiring a lithium ion phosphate cathode active material technology center in Germany in January this year. Tambaram Corporation area residents can register their dogs and cats on a new app and obtain licenses. Last year, the Greater Chennai Corporation received around 100 applications. Recently, a child was attacked by 2 Rottweilers and the corporation began enforcing the licensing, which has led to registrations of more than 1,000 pets on the portal. Pet owners have to sign in with details of the breed, age and sex of the pet. The owners also have to upload documents verifying their address and proof of anti-rabies vaccination. After the details are approved, applicants have to pay ₹50 online. The license needs to be reviewed annually. Getting to Bengaluru now, in Karnataka, the Med Department has issued an orange alert for Bengaluru rural and urban, Chamrajnagar, Chikballapur, Kodagu, Kolar and Mysuru from May 19 as these districts are most likely to receive heavy rainfall. A yellow alert is issued for Dakshina Kannada, Udupi, Hassan, Kodagu, Mysuru and Shivamogga districts tomorrow with a forecast of heavy rains, thunderstorms and gusty winds. These districts are most likely to receive heavy rainfall till May 21st. The wind speed in these districts may go up from may go up from 40 to 50 kmph. Davangiri has been receiving heavy showers. It received 25.5 millimeter rainfall yesterday. Mandya received 12.4 millimeter rainfall and Bagalkot received 11.5 millimeter rainfall yesterday. In Bengaluru, a cloudy sky is forecast for the next 48 hours with moderate rain or thunderstorms towards evening or night in some areas. The city will experience a maximum temperature of 31 degrees Celsius and a minimum temperature of 22 degrees Celsius. Getting to some Hyderabad news now, the Telangana state government has directed all officials to adopt the TG acronym, replacing TS as the official abbreviation of Telangana at the state level and with an immediate effect. This comes after Telangana's vehicle registration code was officially changed from the previous prefix following Chief Minister Revanth Reddy's claim that the Bharat Rashtra Samiti, formerly TRS, had chosen the TS code to harmonize it with TRS. The government had issued a notification to this effect, directing all the departments of the Secretariat to replace all references to TS with TG in the nomenclature of all state PSUs, agencies, autonomous institutions and any other government bodies, official documents including letterheads, reports, notifications, signage within and outside government offices, websites and online platforms and any other official communication. The chief officials were also requested further to review all government institutions under their administrative control to ensure migration seamlessly across the board and specifically to adopt TG in all official documents, standardization in communication and inventory and stationery. A compliance report was also sought by the end of this month. And Nikhil, what about the rest of the news?
जी हां, राजधानी दिल्ली में 1500 से अधिक बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं ने घर बैठे ही वोट डाला है। चुनाव आयोग ने पहली बार 85 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर बैठे ही वोट डालने की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा कल से दिल्ली में प्रारंभ हुई है। दिल्ली में इस श्रेणी में 1,75,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से 97,000 बुजुर्ग और 76,000 दिव्यांग मतदाता हैं। हालांकि 5,472 लोगों ने ही अब तक घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराया है। चुनावी महापर्व में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने यह पहल शुरू की है। इसके अलावा आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और घर वापस पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी की है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव छठे चरण में 25 मई को होना है। चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी राजधानी में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए कुल 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नई दिल्ली पालिका परिषद ने कल सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान राजधानी के मौलाना आजाद रोड मार्केट और साउथ एवेन्यू मार्केट में चलाया गया। इस अभियान के दौरान लोगों से अनुरोध किया गया कि वे प्लास्टिक का उपयोग न करें। इसके अलावा नई दिल्ली पालिका परिषद ने वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया है। दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने कल डेंगू और इसकी रोकथाम के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया। निगम ने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक भागीदारी जरूरी है। जन स्वास्थ्य विभाग के सभी 12 जोन में राष्ट्रीय डेंगू दिवस को मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में दिल्ली की स्वास्थ्य इकाइयों के 150 से अधिक विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी और अस्पतालों के नोडल डॉक्टर शामिल हुए। इस अवसर पर मच्छरों के प्रजनन और इसे रोकने के संबंध में एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। दिल्ली नगर निगम के अन्य जोनों में भी वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में चल रही है। चार दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता बुधवार से द्वारका स्थित यशोभूमि में चल रही है। इस प्रतियोगिता के दौरान पारस्परिक हस्तशिल्प से लेकर नई तकनीक के क्षेत्र में अपना कौशल दिखाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के विजेता सर्वश्रेष्ठ उद्योग प्रशिक्षकों की सहायता से इस वर्ष सितंबर में फ्रांस के लियोन में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे। और अब खबर मुंबई से। मुंबई सीमा शुल्क आयुक्तालय ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब 11.5 किलोग्राम से अधिक सोना और सिगरेट जब्त की है। इनका मूल्य लगभग 7.25 करोड़ रुपए है। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये यात्री दुबई, अबुधाबी, जेद्दा, काहिरा, दोहा, हांगकांग, कुआलालंपुर, कुवैत और मस्कत की यात्रा करके लौट रहे थे। मुंबई क्राइम ब्रांच कल उस कंपनी के मालिक भावेश भिड़े को लेकर के आए जिसकी होर्डिंग घाटकोपर में एक पेट्रोल पंप पर गिरने से 16 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अधिकारियों के मुताबिक घटना के बाद से वो लापता था और उसका मोबाइल भी बंद था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 16 मई को भिड़े को उदयपुर से गिरफ्तार किया। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने कहा है कि जिस पेट्रोल पंप पर विशाल होर्डिंग के गिरने से 16 लोगों की मृत्यु हुई वो बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ओसी के चल रहा था। बीएमसी ने यह भी जानकारी दी है कि पेट्रोल पंप को एक अस्थायी लाइसेंस दिया गया और अधिकारी आगे के दस्तावेजों को सत्यापित करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल महाराष्ट्र सरकार को नए बॉम्बे हाईकोर्ट भवन के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि की पहली किस्त जारी करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस बीआर गवई और जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार को परियोजना के लिए निर्धारित संपूर्ण 9.64 एकड़ जमीन सौंपने के लिए दिसंबर 2024 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सीजीआई ने कहा कि राज्य ने मौजूदा उच्च न्यायालय परिसर की संरचनात्मक ऑडिट का आदेश दे दिया था और वैकल्पिक परिसर को सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। और अब चलते हैं कोलकाता। पश्चिम बंगाल में अगले चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर चल रहा है। सभी राजनीतिक दल सार्वजनिक बैठकें और जनसंपर्क गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 3 चरणों में अभी 20-25 मई और 1 जून को मतदान होना है। आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए चुनाव आयोग भी लगातार निगरानी कर रहा है। और ये थे महानगरों से जुड़े हुए अब तक के प्रमुख समाचार। और अब बात करते हैं मौसम की। तो राजधानी दिल्ली में श्रोताओं आज आसमान साफ रहेगा लेकिन लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अधिकतम तापमान की बात करें तो यह 44 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान आज 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। उधर कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान आज 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। सुभद्रा, अन्य महानगरों यानी कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में आज मौसम कैसा रहने वाला है?
निखिल, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन। मिनिमम टेम्परेचर वाज 26 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 34। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड पार्टली क्लाउडी स्काई, वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स। मिनिमम टेम्परेचर वाज 22 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 31 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थंडर लाइटनिंग। The temperature will hover between a minimum of 25 degrees Celsius and a maximum of 36 degrees Celsius.
और अब समय हो चला है इतिहास के पन्नों में झांक करके देखने का और ये जानने का कि आज के दिन यानी 18 मई को कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई थी। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वर्ष 1848 में आज के दिन ही पहली बार जर्मनी में पहली नेशनल असेंबली का उद्घाटन किया गया था।
1912, the first Indian film Shree Pundalik by Dada Saab Tone was released in Mumbai. It was of course a silent short film lasting for only 12 minutes. Narayan Govind Chitre with the help of R.P. Titmus and cameraman Johnson produced a 8,000 feet long theatrical film which was directed by Ramchandra Tone alias Dada Saab Tone. The entire film was shot in a theatre in Mangaldas Wadi in Bombay.
वर्ष 1991 में आज का ही वो दिन था जब ब्रिटेन की पहली एस्ट्रोनॉट हेलेन शर्मन ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। 27 वर्षीय हेलेन सोवियत सोयूज नाम की अंतरिक्ष कैप्सूल में बैठकर कजाकिस्तान से रवाना हुई थी।
1955, Hindu Marriage Act was amended and 1972, Kokan Krishi Agriculture University was established.
वर्ष 1950 में आज के दिन उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करने के एक साल बाद इसी दिन विश्व के 12 देशों ने अमेरिका और यूरोप की रक्षा के लिए एक स्थायी संगठन की सहमति प्रदान की थी.
1974 this day, India's first successful nuclear bomb test was detonated on the Pokhran test range in Rajasthan. Assigned code name of this test was Smiling Buddha. With this, India became the sixth nuclear power.
और श्रोताओं आपको बता दें कि वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष 1995 के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और गजा पट्टी क्षेत्र से इजरायली सैनिक टुकड़ी हटाए जाने के साथ ही इस क्षेत्र पर उस समय फिलिस्तीनी स्वायत्त शासन को लागू करने की बात कही गई थी.
1995 this day, criminal law amendment bill was introduced in parliament to replace the 10-year-old controversial TADA Act.
वर्ष 2006 में आज के दिन ही नेपाल नरेश को कर के दायरे में लाया गया और 2007 में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान का कार्यकाल असीमित समय के लिए बढ़ा दिया गया था.
And today is a special day, friends, for museum lovers as we are celebrating International Museum Day. And of course, it's a day that's close to the hearts of art lovers everywhere as we celebrate the extraordinary role museums play in cultural exchange and development. And of course, this was established by the International Council of Museums. International Museum Day brings museums from all corners of the globe together to organize captivating events, exhibitions, educational programs. This year, the celebration will be centered around the theme, Museums for Education and Research. It is a reminder that museums aren't just repositories of artifacts, but they are dynamic educational institutions, fostering learning, discovery, and cultural understanding.
श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस. ये प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है और आपको बता दें कि भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण यानी राजस्थान में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पूरा किया था और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस. इसके बाद वर्ष 1998 में भारत ने 11 मई और 13 मई को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया भर को चौंका दिया था. अचानक किए गए इस परमाणु परीक्षण से अमरीका सहित कई बड़े देश अचंभित रह गए थे और पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में यह मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया था कि पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी थी और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान और उसकी साख को एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर जाना जाने लगा था. और इस ऑपरेशन को जब पूरा किया गया तो उसके बाद भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के जो प्रमुख थे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम, इन सभी के लिए एक बहुत ही यादगार लम्हा वो बन चुका था. और अब समय हो चला है जानी मानी हस्तियों को याद करने का.
इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे. टुडे इज द टाइम टू एजुकेट आवरसेल्व्स एंड अदर्स अराउंड अस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एचआईवी वैक्सीन्स एंड इट्स रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ एड्स एंड एचआईवी इन्फेक्शंस. टुडे दैट्स अ डे ऑफ एचआईवी वैक्सीन अवेयरनेस डे. दिस वॉज लेड बाय द National Institute of Allergy and Infectious Diseases. The day is celebrated, of course, to take a moment to appreciate the dedication of volunteers, community members, health professionals and scientists who are tirelessly collaborating to develop a safe, effective, preventive HIV vaccine.
श्रोताओं, अब समय है जानी मानी हस्तियों को याद करने का. तो आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है पंचानन माहेश्वरी की. वे सुप्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानी थे. पंचानन माहेश्वरी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और आगरा कॉलेज से अपना अध्यापन कार्य शुरू किया था. उन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालयों में भी अपना योगदान दिया और 1948 में दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष बनकर आ गए और फिर जीवन पर्यंत यहीं पर रहे थे. उन्हें उनके क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी. उन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किया था और भ्रूण विज्ञान तथा पादप क्रिया विज्ञान के सम्मिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया था. इससे फूलों के विभिन्न भागों की कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने में सफलता मिली थी. और आपको बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना जैसे कई देशों के विद्यार्थी भी उनके अंतर्गत अध्ययन करने के लिए आते थे और लगभग उनके पथ प्रदर्शन में 60 विद्यार्थियों ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी. और श्रोताओं, आपको बता दें कि टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना और टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें फेलो बनाकर सम्मानित किया था. और आज ही हम याद कर रहे हैं जय गुरूदेव को. आज उनकी भी पुण्यतिथि है. वे एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरू थे और गुरु के महत्व को सर्वोपरि रखने वाले बाबा जय गुरूदेव भी इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए. अपने प्रत्येक कार्य में वे गुरूदेव का का स्मरण कर जय गुरुदेव का उद्घोष करते थे और उनका ये कहना था कि शरीर तो किराए की कोठरी है, इसके लिए 23 घंटे दो, लेकिन इस मंदिर में बसने वाले देव यानी कि आत्मा के लिए कम से कम 1 घंटा जरूर निकालो, क्योंकि हर मर्ज की दवा है, हर समस्या का हल है, बस गुरु की शरण में हमें जाना होगा।
American motion picture director who was the most prominent filmmaker of the 1930s during which he won 3 Academy Awards as best director. Tributes to Frank Capra who took birth this day in 1897 and birth anniversary of crooning legend Perry Como. In a singing career that spanned over 6 decades, the name Perry Como has come to mean that warm, smooth, easy listening, romantic songs that characterized popular music in the 1940s. And of course, he was often compared to crooners like Bing Crosby and Frank Sinatra. He sold over 100 million records during his career. Let's check out this one radio smash, Catch a Falling Star.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you want to hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it.
श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है मुकुंद दास की। वे भारतीय बांग्ला भाषा के कवि, गीतकार, संगीतकार और देशभक्त थे। उन्होंने ग्रामीण स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और वर्ष 1905 में अश्विनी कुमार दत्त ने बंगाल के प्रस्तावित विभाजन के खिलाफ बारीसाल टाउन हॉल में एक विशेष भाषण दिया था और इसके संदेश को दूर तक फैलाने के लिए मुकुंद दास ने अपना योगदान दिया और उन्होंने नाटकों के माध्यम से नेताओं के संदेशों को गांव गांव तक पहुंचाया था। और आपको ये बता दें कि उनकी इच्छा थी कि देश के लिए कुछ किया जाए और इसीलिए उन्होंने अपनी उत्कृष्ट कृति मातृपूजा की रचना की और उनके नाटक का प्राथमिक विषय और उद्देश्य केवल देशभक्ति और स्वाधीनता का आंदोलन था।
Birthday of Rick Wakeman, British keyboard player, composer, songwriter, most known as the keyboard wizard for progressive rock band Yes. His solo albums have sold over 50 million copies. And friends, here's a piano cover of Cat Stevens' classic, Morning Has Broken, performed by Rick Wakeman. Country singer George Strait celebrates his birthday today, of course, with more than 60 number one hits, history-making concerts and music that's still loved by one and all. No artist, friends, really compares to the one and only George Strait. Here's a track for him, the king of country music. Here goes.
I still feel 25 most of the time. I still raise a little cane with the boys. Honky tonks and pretty women, Lord, I'm still right there with them, singing about the crowd and the noise. Sometimes I feel like Jesse James, still trying to make.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है रीमा लागू की। वे हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री रही हैं और मुख्यतः उन्हें फिल्मों में मां की शानदार भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है। फिल्म मैंने प्यार किया की साथ ही मां हो, या फिर वास्तव की कठोर मां, या फिर ये दिल लगी की मालिकानामा रीमा लागू की, इन भूमिकाओं का कोई सानी नहीं रहा है। उन्होंने नए जमाने की मां की भूमिकाओं को खूब चरितार्थ किया। आशिकी, साजन, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, वास्तव, कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ हैं जैसी कई फिल्मों में उन्होंने मां के किरदार को बहुत ही जीवंतता के साथ निभाया था और खासतौर पर उन्होंने सलमान खान के लिए कई फिल्मों में मां की भूमिका निभाई थी। आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म पर उन पर फिल्माया गया ये गाना।
आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समझन है।
हम कुछ आज सुनाए, ये उनका भी मन है। गाने बैठे गाना सामने समधन है।
और श्रोताओं को बता दें कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार 4 बार मिला था और रंगमंच से अपने अभिनय का सफर शुरू करने वाली रीमा लागू ने हिंदी फिल्मों में कई सराहनीय भूमिकाएं निभाई थी और उन्होंने कयामत से कयामत तक में जूही चावला की मां के किरदार से मां का किरदार करना शुरू किया और अंत तक अपने अभिनय के क्षेत्र में वे सक्रिय रही थी। तो आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है कृष्ण पट्टा भी जो इसकी वे प्रसिद्ध भारतीय योगाचार्य थे और भारतीय योग के इतिहास में उनका नाम सबसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है और भारत में योग के महत्व को उन्होंने विस्तार से समझाया था। और इसी के साथ श्रोताओं अनुमति दीजिए निखिल और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर संपन्न करने की।
स्टे ट्यून फॉर समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन विच इज कमिंग अप नेक्स्ट फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।